नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकाय सर्वाय भूतेषु संतुष्टाय येनां तेनां वा सर्वेन्द्रियोपाय शान्त्या च तोषाय याशु जनार्दनः दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपाशन्त्या च तुष्यादिषु जनार्दनः दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपाशन्त्या च तुष्यादिषु जनार्दनः दयाय सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियपाशन्त्या च तुष्यादिषु जनार्दनः ॐ ज्ञानान्तरान्दास्य ज्ञानाञ्जनाशलख्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां सगराजतां सहागना रघुना तन्वितं तं सजीवं सद्वैतां सवधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्णापदान् सागना ललिता हे कृष्णा तरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कन्त राधा कन्त नमोऽस्तुते सत्ता कञ्चना गौराङ्गी राघो वृन्दावनेश्वरी ऋषभानी सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द हरे कृष्णा ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक चुना क्योंकि आज इसका उनके भक्तों के लिए एक बहुत खास दिन है. क्या दिन है आज? December 1st. तो आप कहोगे December 1st इसकी आध्यात्मिक महत्व क्या है? शास्त्र में तो कहानी लिखा, हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी आज के विषय में कुछ खास तो नहीं लिखा. तो ये खास दिन है क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे भक्त सारे विश्व में मैराथन करते हैं. किस विषय के ऊपर? ग्रंथों को बांटने के लिए. तो आज का जो हमने श्लोक चुना है भागवतम का, ये श्लोक हमें भागवतम के चौथे स्कंद में प्राप्त होता है. और इस श्लोक में नारद मुनि जी प्रचेतस को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं. इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा नारद मुनि प्रचेतस को शिक्षा दे रहे हैं. प्रचेतस ने 10,000 साल तक तपस्या का पालन किया था, तो नारद मुनि जी उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे. तो इस श्लोक में नारद मुनि जी बता रहे हैं कि किस प्रकार आप परम भगवान श्री जनार्दन को संतुष्ट कर सकते हो. हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम हर कार्य करें भगवान की संतुष्टता और प्रशंसा के लिए. जैसे कि क्षेत्रीय महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए कहा कि हमें उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल हो उन्हें हमें त्यागना चाहिए। तो यहां का नारद मुनि जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो, इस विषय में नारद मुनि जी क्या कहते हैं। सबसे पहले समस्त जीवों पर क्या करें, समस्त जीवों पर दया करें। दूसरा, किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहो। तीसरा, इंद्रियों को वश में रखो। अगर आप इन तीन चीजों का पालन कर सकते हो तो आप अवश्य ही भगवान को प्रसन्न कर सकोगे, उन्हें संतुष्ट कर सकोगे। तो नारद मुनि जी के द्वारा ये उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है, एक समस्त जीवों पर दया करो, दूसरा किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहो, तीसरा इंद्रियों को वश में रखो। प्रभुपाद जी ने भी हमें ये कहा था कि सब प्रकार की सेवाओं में प्रचार की जो सेवा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज दी एसेंस, मतलब सब प्रकार की सेवा, चाहे आप पुजारी हो, चाहे आपकी सेवा हो रसोई बनाना, लाइफ मेंबर बनाना, चाहे कुछ भी सेवा हो, सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जब आप प्रचार करो भगवान का उपदेश अज्ञान व्यक्तियों को पहुंचाने का प्रयास करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार करने की भावना कहां से आती है? असल में जो प्रभुपाद जी ने हमें स्लोगन दिया वो बिल्कुल नारद मुनि जी के इस श्लोक पर निर्भर है। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सब सेवाओं में प्रचार की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रचार का क्या अर्थ और प्रचार का आधार क्या है, प्रचार को किस विषय पर निर्भर रहना चाहिए? उसको निर्भर रहना चाहिए शास्त्रों पर। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा सब प्रकार की सेवा में प्रचार सबसे अवश्य है, और प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण, प्रचार का अर्थ है ग्रंथों का वितरण। और ये प्रचार करने की भावना कैसे जागृत होती है ये निर्भर है पवित्रता पर। तो नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, एक इंद्रियों को वश में रखो, दूसरा संतुष्ट रहो हर स्थिति में। तो इंद्रियों को वश में जब रख सकते हो, जब आप ये सीखो कि इंद्रियों का सदुपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि नारद मुनि जी नारद पंचरात्न में कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परवेण निर्मलम ऋषिकिन सेवना भक्ति उचते। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें नारद मुनि जी कह रहे हैं कि तुम सब उपाधियों से मुक्त हो सकते हो अगर तुम इंद्रियों का उपयोग करो ऋषिकेश की सेवा में। तो प्रचार की सेवा, दया सब जीवों पर प्रकट करने की सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हर भक्त के लिए। वैष्णव के विषय में कहा गया है वो है परा दुखा दुखी, परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का क्या अर्थ, परा दुखा दुखी का अर्थ है कि जब वो दूसरे व्यक्तियों को दुखी देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है। देखो साधारण स्थिति में जब आप किसी और को दुखी देखते हो तो आप ज्यादा सुखी बन जाते हो, क्यों? आप किसी को दुखी देखते हो तो आप सोचते देखो हम कितनी अच्छी स्थिति में है, दूसरा व्यक्ति दुखी है। सच बात है ना? समझो आप देखते हो व्यापार में कि किसी और का धंधा फेल हो गया और आपका धंधा सफल है तो आप बहुत खुश होते हैं, हमारा धंधा ठीक चल रहा है दूसरे का नुकसान में जा रहा है, हम होशियार हैं। पर वैष्णव के विषय में प्रयाग महाराज जी कहते हैं परा दुखा दुखी, कि दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाते हैं। तो आप कहोगे कि दूसरे व्यक्ति तो अपने आप को दुखी नहीं मानते, वो तो हंस रहे हैं, बड़ी मोटरों में घूम रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, हाँ हर प्रकार की भौतिक सुविधा उनके पास है, तो वो तो ये सोचते हैं कि मैं सुखी हूं। सच बात है, अगर आप प्रचार करने जाओ और किसी को ये कहो कि आप दुखी नजर आते, वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं तो सुखी हूं। वास्तविकता तो यह है कि अगर भौतिक स्थिति में अगर कोई दुखी हो भी तो पखंड करता है कि मैं खुश हूं, है कि नहीं? तो आप कैसे समझोगे कि वो दुखी है? इस विषय के ऊपर प्रहलाद महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो कि हम भागवतम के सातवें स्कंध में प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, सोचेत तो विमोकसा चेत से इंद्रियार्था मां सुखाय भरम मूढ़ो विमूढ़म सोचेत तो विमोकसा। जब मैं सोचता हूं कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को बदल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का, तो ये देखकर सोचकर मुझे अत्यंत दुख पहुंचता है। और प्रहलाद महाराज जी ने श्लोक कब कहा? कल परसों नहीं, हजारों साल पूर्व। और उन्होंने जो उपदेश दिया अपने साथियों को, वो उपदेश उन्होंने प्राप्त किया था किससे? नारद मुनि से। तो हजारों 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 साल पूर्व भी ये श्लोक नारद प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास करते हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए। और आज जो विज्ञानियों का प्रयास है, वो विज्ञानियों का प्रयास है अवश्य ही समाज की कठिनाइयों को कम करने के लिए। जैसे कि अगर कोई गहरी बीमारी हो तो ये नहीं कहेंगे कि ये काम बंद करो गलत काम, वो तो कहेंगे कि हम इसका उपाय ढूंढेंगे। जैसे एक बीमारी है एड्स, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी एड्स, अच्छा अंग्रेजी शब्द है, तो एड्स है, बहुत गहरी बीमारी है और इसे 90% लोगों की मृत्यु हो जाती है आज नहीं तो कल जिसको ये बीमारी हो। और ये बीमारी क्यों होती है? बिना भेदभाव के भोगरा से वगैरह करो तो ये बीमारी हो जाती है। तो ये नहीं कहेंगे कि ये गलत काम मत करो, पर पश्चिम देशों में सरकार करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च रही है एड्स का उपाय ढूंढने के लिए, और हर एक थोड़े महीने बाद कोई कंपनी कह देती है हम एड्स का उपाय ढूंढने वाले हैं। ये नहीं कहेंगे कि गलत काम बंद करो, पर वो कहेंगे नहीं गलत काम करते जाओ पर हम तुम्हें उपाय दे देंगे। तो यही है प्रयास भौतिकवादियों का कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलना। तो जो वैष्णव भक्त है, असल में हम सब अगर सोचें कि हम वैष्णव बन गए हैं तो वो भी एक रूप से गलत विचार है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बनने के लिए, या दूसरे शब्दों में हम ये सोच सकते हैं कि हम उस मार्ग पर प्रवेश कर चुके हैं कि अगर हम इस मार्ग के सब विधियों का पालन करेंगे तो अंत में हम वैष्णव बन जाएंगे। पर अगर हम ये सोचें कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हम वैष्णव बन गए, तो ये गलत है। हमें यही सोचना चाहिए कि ये प्रॉपर का टेप थोड़ा स्टे करेगा, ये कहीं ना टेप बड़ी लाउडली। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव बनने के लिए। तो वैष्णव बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो वैष्णव का यह विचार रहना चाहिए कि हमने पूरे विश्व को सुखी बनाना है, या नारद मुनि जी कह रहे हैं समस्त जीवों पर दया करो। इसलिए जो वैष्णव है एक चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। समझी नहीं कहेंगे साहब? जैसे कि आप भागवतम में पढ़ते हो, जब भारत महाराज रघुगणा की पलकी उठा रहे थे, महाराज रघुगणा को देर हो रही थी, तो उन्होंने अपने पलकी उठाने वालों को कहा तेजी से ले जाओ मुझे, तो बाकी सब दौड़ने लगे, पर महाराज जद भारत कदम भी पृथ्वी पर नहीं रखते थे ये देखे बिना कि कोई चींटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समस्त जीवों पर दया प्रकट कर रहे थे। तो समस्त जीवों पर हम दया कैसे प्रकट कर सकते हैं? हम दया प्रकट कर सकते हैं समस्त जीवों पर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर। जैसे कि हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वो कहते थे कि अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो एक ही चीज की कमी है। क्या है वो? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर इस विश्व में किसी चीज की कमी है तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। तो इस कमी को कौन दूर करेगा? हमारे राजनीतिक नेता? हाँ नहीं, इस कमी को वही व्यक्ति दूर कर सकते हैं जिन्होंने भगवान के शिक्षा को स्वीकार किया है और जो कि भगवान के शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण पर बहुत ज्यादा बल दिया। प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उन्होंने सबसे पहले शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं कि इस विषय पर बल है क्या के प्रचार करने का। जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमें गीता का सार प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में भगवान अंत में क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। या इदम परमं गुह्यम्, और इससे ज्यादा प्रिय ना कोई भक्त इतिहास में हुआ है ना होगा। ये भगवान की वाणी है कि सब भक्तों में सबसे प्रिय वो है जो मेरा प्रचार करता है, और इससे ज्यादा ना कोई प्रिय हुआ है ना होगा। चैतन्य चरितमृत में बड़ा सुंदर वर्तलाप है चैतन्य महाप्रभु जी और हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जो थे नामाचार्य, सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि कई व्यक्ति हैं जो प्रचार करते हैं और जिनका आचार नहीं, कई हैं जिनका आचार है पर आचार पर प्रचार नहीं करते, पर आप दोनों कर रहे हो। हरिदास ठाकुर उनका आचरण बिल्कुल शुद्ध था और वह हरि नाम के साथ जुड़े हुए थे। तो जैसे हरिदास ठाकुर ने उस वैश्य को भी पवित्र बना दिया और वैश्य भी भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर को एक समय चैतन्य महाप्रभु जी मिलने गए। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर को मिलने रोज जाते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर नामाचार्य होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने मुसलमान खानदान में जन्म लिया था, वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेने नहीं जाते थे। तो उनकी भजन कुटीर जो है जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल पास में थी, तो भगवान स्वयं उनको मिलने रोज जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनके पास जाते थे। तो हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास इन यावनों का सुधार कैसे होगा? यावन किसे कहा जाता है? ये बड़ा सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितमृत में। यह सबारा कौन माते है बे निस्तारा, तारा हेतु ना देखे ए दुखा अपारा। हरिदास किस प्रकार इन यावनों का उद्धार होगा? मैं दुखी हूं ये सोचते हुए कि किस प्रकार इन यावनों का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि यावनों का ये अर्थ नहीं कि जिन्होंने पश्चिम देशों में जन्म लिया हो। हम तो भारत में सोचते हैं यावन हम नेचर तो सब पश्चिम देश के, हम तो सब शुद्ध खानदान के हैं। नहीं, यावन हम नेचर से अर्थ है जो कि शास्त्रीय विधियों के आधार पर जीवन को नहीं बिता रहा। बेशक आपका जन्म हुआ हो तो बड़े ब्राह्मण खानदान में, पर आपका आचरण और आप विधि के अनुसार नहीं चल रहे तो आपको शास्त्र के अनुसार यावन और नेचर माना जाएगा। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करके अपने विदेशी भक्तों को ब्राह्मण बुला बनाया तो कई भारतीयों ने कहा कि भक्तिदानंद स्वामी हमारे धर्म को नष्ट कर रहे, विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया। तो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुना कर्मा विभाग का सहा, गुणों के आधार पर व्यक्ति को ब्राह्मण हम मानते हैं। तो तो केंद्रीय महाप्रभु जी ने कहा कि किस प्रकार यामनम नचोदम उधार होगा, हरिदास वो है तो चिंता में हो कैसे उपाय होगा, मुझे तो पता ही नहीं कैसे होगा। ये भगवान की निम्रता थी। तो हरिदास ने कहा प्रभु चिंता ना करिया, प्रभु आप चिंता मत करो, इन यामनों का उधार होगा। कैसे होगा? हा राम बाली कहे नामा भास, भगवान के दिव्य नामा का उच्चारण लेकर केशव सिट ओवर देयर, भगवान के दिव्य नामा का उच्चारण लेकर इन यामना का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी इन श्लोकों में के तात्पर्य में कह रहे हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने चिंता प्रकट की, जिस प्रकार हरिदास ने कहा भगवान से क्या आप चिंता मत करो, भगवान चिंता में थे, हरिदास ने कहा नहीं आप चिंता मत करो, हरि के नाम का उच्चारण लेकर इन यामना का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी ने समझाया है अनेक श्लोक इन श्लोकों के तात्पर्य के द्वारा कि वैष्णव भक्त का सबसे प्रथम कार्य यह होता है कि वो चिंता करे किस प्रकार दूसरों का उद्धार होगा, सुधार होगा। भगवत में कथा है महाराज जयंती देवा की, आजकल जो हमारे राजनीतिक नेता हैं उनमें तो कोई आध्यात्मिक चिंता ही नहीं, पर प्राचीन समय के जो नेता थे वो भगवान के भक्त होते थे, राजा और ऋषि, राज ऋषि। तो महाराज जयंती देवा जयंती देवा ने एक समय व्रत रखा था लगभग 48 दिनों का 50 दिनों का 48 दिनों का, और वह तो तोड़ने ही वाले थे कुछ प्रसाद के साथ जो कि दूध चीनी और पानी से बना था, कि भूखा ब्राह्मण आ गया उनके महल में और कहने लगा हे राजा मैं भूखा हूं, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि मेरी भूख को दूर करो। आज आप कह सकते हो ऐसे अपने नेताओं को, आज उनके पास भी आप नहीं जा सकते, जब नेताओं की मोटर गुजरती है तो चारों तरफ से सड़कें बंद कर देते हैं ना। पर प्राचीन समय में तो आप किसी समय भी राजा के महल में जा सकते थे और अपनी समस्या उन्हें सुना सकते थे। तो राजा ने दे दिया थोड़ा सा प्रसाद जो शिकार करने जा रहे थे। फिर एक और भूखा व्यक्ति आया, तीसरा भूखा व्यक्ति चंदाला, तो चौथा एक प्यासा व्यक्ति आया, तो पानी था वो भी राजा को देना पड़ा। असल में देवता राजा की परीक्षा ले रहे थे। तो सारा अन्न प्रसाद पानी सब चले गया। फिर उस राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत स्तुति अर्पण की भगवान को। उन्होंने कहा न काम है हम गतन ईश्वरत परम, हे भगवान मुझे आपसे विनय कर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना योगिक सिद्धियां ना किसी प्रकार की सुविधा, अंतस्तीत न भवंती दुखा, आप मुझे सबका कष्ट जो है, दूसरे लोगों का जो कोटा है कष्ट का वो मेरे को सौंप दो, दूसरों को सुखी बनाओ मुझे दुखी रहने दो। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये बुद्धि विचार भावना हम ऐसा भक्तों को रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी के पास एक समय एक भक्त आए जिनका नाम था वासुदेव दत्त। अक्सर हम तो भगवान के पास जाते हैं अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर, हमें धन भी चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए बच्चों के लिए, सुंदर पत्नी चाहिए, अमेरिका की टिकट चाहिए वगैरह। पर वासुदेव दत्त गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास और कहने लगे मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा बोलो मांगो, نہیں 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 مانگنے سے پہلے آپ یہ وعدہ کرو کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ دو گے. دیکھو پہلے آپ وعدہ کرو کہ میں جو مانگوں گا وہ آپ دو گے مجھے. تو چیتن مہا پوری نہیں نہیں مانگو مانگو نہیں نہیں پہلے وعدہ کرو. تو کیا مانگا انہوں نے؟ سب پتیتوں کا ادھار کر دو اور میں بہت ہندوستان میں بھٹکتے رہوں گا جب تک ان سب کا پاپ کا کوٹا سماپت نہیں ہوتا. دیکھو یہ تھی واسدیو دت کی پرارتھنا بھگوان سے. آپ دوسروں کا ادھار کرو تو مجھے ترس میں دو, بھٹک میں دو, کشٹ دکھ میں دو. تو اس پرکار ہمارے شاستروں میں انیک ستھانوں میں اس وشے پر بول دیا گیا ہے کیا کہ ہمیں پرچار میں جڑنا چاہیے. تو اگر پرچار پر بل دیا جاتا ہے اس لیے تو یہ پرم بھگوان نے سوئم اس پر بل دیا. آخر یہ جو گیتا کا شلوک ہے یا ادم پانم بھویم, یہ کل تو نہیں بولا تھا بھگوان نے. گیتا کا اپدیش بھگوان نے سوریہ کے دیوتا ویواسوان کو دیا تھا کروڑوں سال پورو. تو کروڑوں سال پورو بھی بھگوان نے اس کی آوشکتا سمجھی. اور جب بھگوان چیتنیا مہاپربھو جی کے روپ میں آئے تو انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ جائے جا کو تائے کہو, جسے بھی تم ملو اسے کیا کہو؟ کرشنا اپدیش. تو اسی وچار کو لیتے ہوئے گوسوامیوں نے ویدک بھکتی سمبندھت گرنتھوں کی رچنا کی اور پراچین سمے میں کتابیں چھاپنے کی سویدھا نہیں تھی. کتابوں کو لکھتے تھے کس پر؟ پتے پر. اور جو دھنی لوگ ہوتے تھے وہ نقل کرواتے تھے. 300 سال پہلے تک گوسوامی نے تو گرنتھوں کی رچنا کر دی. تو گرنتھ ہوتے تھے کوئی ایک دو. بھکتی سدھانت جی پہلے مہاناچاریہ تھے جو موٹر میں بیٹھے اور پراپا جی نے ہوائی جہاز میں بھی بیٹھے. اسی پرکار پراپا جی نے سب کا بھرمن کر کے پرچار کیا. تو بھکتی ٹھاکر بھکتی ونود پہلے مہاناچاریہ تھے ہماری سمپردائے میں جنہوں نے کتابوں کو چھاپا اور بانٹا. تو پہلے سب سے بڑے بک ڈسٹریبیوٹر تھے ہماری سمپردائے میں ٹھاکر بھکتی ونود. انہوں نے ایک پستک لکھی تھی چیتنیا مہاپربھو جی کے جیون پر, ٹیچنگ دا لارڈ چیتنیا ہز لائف اینڈ پریسیپٹس. اور پھر ہے وہ کیا کر رہے ہیں تو چیتنیا مہاپربھو ٹھاکر بھکتی ونود جی نے یہ چیتنیا مہاپربھو جی کے اوپر کتاب وشو کے سب بڑے مہاودیالوں کو بھیجا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے 1968 میں مگل یونیورسٹی میں گئے تھے تو اس یونیورسٹی کے لائبریری میں بھی ایک کتاب تھی جو کہ ٹھاکر بھکتی ونود جی نے بھیجا تھا 1896 میں, اسی سال جب کہ پراپا جی نے جنم لیا تھا. تو ٹھاکر بھکتی ونود نے گرنتھوں کا وتران آرمبھ کیا. پر انہوں نے اکیلے تھے, اب تو جانتے ہو ٹھاکر بھکتی ونود جی, تو انہوں نے سوئم کتابوں کو بھیجا وشو کی بڑی بڑی مہاودیالوں میں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے بھکتی سدھانت جی کو یہ آدیش دیا کہ تم گرنتھوں کا لکھو اور وتران کرو. تو بھکتی سدھانت سرسوتی ٹھاکر انہوں نے اس وشے پر بھول دیا کیا؟ گرنتھوں کو لکھنا اور بانٹنا. ایک سمے بھکتی سدھانت جی پراپاد جی کے ساتھ رادھک کنڈ میں اور بھکتی سدھانت جی برج منڈل پریکرم لے جا رہے تھے تو پراپاد جی انہیں ملنے آئے تھے رادھک کنڈ میں. تو بھکتی سدھانت جی اس نے کہا پراپاد جی سے, اگر بھگوان تمہیں کبھی سمپتی دے تو تم کیا کرنا؟ کتابوں کو پرکاشت کرنا اور بانٹنا. وہ ایک سمے پراپا جی بیٹھے تھے بھکتی سدھانت جی کے ساتھ کلکتا میں. تو بھکتی سدھانت جی نے ایک مردنگا کی ڈرائنگ کی کاغذ پر اور پراپا جی کو کہا, تم کا جو کاریہ ہے یہ ہے بےحد مردنگا, بےحد مردنگا. کیوں؟ क्योंकि साधारण मृदंगा की आवाज थोड़े दूर तक ही जा सकती है, चाहे आप कितना भी बड़ा एम्पलीफायर ले आओ। तो जब किताबों को आप बांटते हो तो उसकी आवाज 10,000 मील भी जा सकती है। जैसे आज सुबह हम एक पत्र पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी को एक पोर्चुगल से 11 साल के बच्चे की छुट्टी आई थी, 11 साल का बालक था, और उस समय पोर्चुगीज में, पोर्चुगल में हमारा कोई मंदिर नहीं था, पर किसी व्यक्ति ने एक भगवत गीता पहुंचा दी थी इस लड़के को, 11 साल का लड़का, और 11 साल में वो भक्त बन गया। और उसका बाप अमेरिका आ रहा था तो उसने अपने बाप को कहा अमेरिका से ये सब किताबें मेरे लिए खरीद कर लाओ। तो बाप प्रभुपाद जी को मिला और प्रभुपाद से कहा कि मेरा बेटा आपकी गीता पढ़ता है, उसने मुझे कहा कि अमेरिका से सब किताबें लेके आओ, क्योंकि उस समय पोर्चुगीज में कोई मंदिर नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने यह उदाहरण लिया भक्तों को यह बताने के लिए कि किस प्रकार ये ग्रंथों का जो वितरण है यह है बृहद मृदंगा। फिर प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को लिखकर कहा ये जो ग्रंथों का वितरण है यह है बृहद कीर्तन। हम कीर्तन करते हैं मंदिर में 4 भक्त 6 भक्त 8 भक्त, तो यह है बृहद कीर्तन, बृहद मृदंगा बृहद कीर्तन। क्योंकि जब आप ग्रंथों को बांटते हो तो इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। तो ग्रंथों को बांटना यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हम जब लाइफ मेंबरशिप भी बनाते हैं, प्रभुपाद जी ने लाइफ मेंबरशिप का प्रोग्राम की स्थापना की थी, एक रूप से स्थापना की थी इस भाव से कि इसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी और धन का उपयोग किया जा सकता है मंदिरों को बनाने के लिए, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। पर प्रभुपाद जी ने किए कहा कि जो मेंबर बने उन्हें किताबें दो, कृष्णा बुक, नेक्टर डिवोशन, टीएलसी, भगवत गीता, क्योंकि जब लोग ये किताबों को पढ़ेंगे तो इसके द्वारा उनका जीवन सुधरेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो दिसंबर का महीना है और ये शुरू हो रहा है आज December 1 के साथ, ये दिसंबर का महीना पूरे इस्कॉन में जाना जाता है मैराथन का महीना। आज अगर आप विदेश में किसी भी मंदिर को फोन करोगे ना तो कोई फोन का जवाब ही नहीं देगा। आज से विदेशों में, बॉम्बे में भी, भारत में भी कई मंदिरों में पूरा मैराथन किया जाता है। रस्तोगी जी आप इंग्लैंड से हो, इंग्लैंड में भी मैराथन करते हैं ना, हाँ सुबह से रात तक, हाँ तो सुबह से रात तक भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। जैसे कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तुम युद्ध में लड़ो मेरी खुशी के, तुम निमित्त मात्र बनो। तो हम प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि प्रचार में सफलता प्राप्त हो जाएगी तो वो गलत है। God helps those who help themselves। मदर यशोदा ने भी प्रयास किया था भगवान को बांधने के लिए, तो फिर भगवान ने अंत में क्या कहा कि मेरी माता इतनी प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, अब निराश है तो उसे मुझे बांधने दो। तो भगवान जब देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षा आखिर इन ग्रंथों में है क्या, इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी के आधार पर ही समाज सुखी हो सकता है। ये विचार बिना किसी शंका के हमें रहना चाहिए कि कोई भौतिक सफलता के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे किसी के पास 100 मोटरें हो, आप भौतिक सुविधाओं से असली सुख नहीं प्राप्त कर सकते। असली सुख केवल जब प्राप्त कर सकते हो जबकि आप परम भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। तो भारत में तो दिसंबर के महीने में एक खास आध्यात्मिक महत्व भी है, हम इसे जानते हैं गीता जयंती का महीना। ये महीने कब है गीता जयंती? अच्छा 19 तारीख है गीता जयंती। आप सब जानना चाहोगे कि क्या कारण है कि हम ये मैराथन दिसंबर के महीने में करते हैं। हाँ असल में ये मैराथन शुरू हुआ था पहले 1 दिन के मैराथन के साथ शुरू में। पश्चिम देशों में, अमेरिका में मैराथन शुरू हुआ था अमेरिका में क्रिसमस के समय, क्रिसमस से पहले जो दुकानें हैं वो बहुत देर तक खुली रहती हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक। तो पापा जी तो हर पत्र में भक्तों को लिख रहे थे कि अगर तुम मुझे संतोष करना चाहते हो तो ग्रंथों को बांटो, इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, यू हैव दैट पोस्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज कम फ्रॉम बॉम्बे, व्हाई इट इज नॉट अप, put it next month after the marathon. No, don't do it now, put it next month. The marathon should be ahead before the marathon. Okay, what's the use of putting it after the marathon starts? So humne BBT Bombay mein ek poster bhi banaya tha iski, sab bhakton ko pehle se suchna mile iske bare mein. So Prabhupada ji to har patra mein bhakton ko yahi likhte the, if you want to please me distribute my books, agar tum mujhe santosh karna chahte ho to granthon ka vitran karo. तो भक्त ये सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं बांटो बांटो बांटो, कैसे बांटे, क्योंकि उन्होंने तो भक्तों के इतना अभ्यास नहीं था। तो फिर भक्तों ने, एक भक्त ने देखा कि क्रिसमस के समय दुकानें ज्यादा देर तक खुलती हैं, तो उन्होंने ज्यादा देर तक वो दुकानों के सामने खड़े हो गए। तो एक दिन के मैराथन से ये 3 दिन का मैराथन बना, 3 दिन के मैराथन से 1 हफ्ते का मैराथन बना, वो 1 हफ्ते के मैराथन से अभी कई महीनों से, कई सालों से पूरे महीने का मैराथन भक्त ने कर लिया। क्योंकि भक्त तो हर चीज का लाभ उठाते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का। तो ये शुरू हुआ था दिसंबर के महीने में, क्रिसमस से संबंधित था, क्योंकि क्रिसमस के समय पश्चिम देशों में दुकानें वगैरह देर तक खुली रहती हैं, और क्योंकि तो भक्तों ने इसका लाभ उठाया, दुकानों के सामने लोगों को क्रिसमस मूड का लाभ उठाकर ग्रंथों को बांटने के, जैसे हम दिवाली के समय लोगों को प्रेजेंट्स वगैरह देते हैं, तो पश्चिम देशों में क्रिसमस के समय देते हैं। तो इस भावना, इस कारण ये क्रिसमस दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था। और फिर भारत में तो आप कह सकते हो कि गीता जयंती के समय के उपलक्ष्य में हम ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों को बांटा जाए। तो अगर हम भक्त प्रयास करेंगे इन ग्रंथों को बांटने के लिए, तो अवश्य ही भगवान सफलता देंगे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि इन ग्रंथों में पूरा ज्ञान है जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का एक श्लोक भी समझ जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी, प्रभुपाद जी का एक विचार था कि भारत भूमि में सबसे ज्यादा वितरण हो सकता है ग्रंथों का। आपको शायद पता होगा कि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वो दिल्ली में आते थे ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, तो उस समय प्रभुपाद जी ग्रंथों का अनुवाद करते थे, फिर दिल्ली में आते थे भीख मांगने के लिए, लोगों से चंदा मांगने के लिए, जैसे आप लोग चंदा मांगने जाते हो प्रभुपाद जी भी जाते थे, फिर चंदा मांगकर प्रभुपाद जी जाते थे कागज खरीदने के लिए, फिर छपाई करने के लिए, फिर वो किताबों को बाइंड कराने के लिए खुद कराते थे अपने आंखों के अंदर देखकर, और फिर जब किताबें तैयार हो जाती थी तो क्या करते थे, बांटने के लिए जाते थे। और आपको शायद पता होगा कि एक समय गर्मी के मौसम में प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस में बांट रहे थे, और वो बेहोश हो गए, सनस्ट्रोक हो गया हाँ, धूप के कारण, हाँ लू लग गई, और जैसे ही होश में आए उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कनॉट प्लेस में एक शायद कॉफी हाउस है, कॉफी क्लब, कॉफी हाउस है, दो कनॉट प्लेस था, अब बंद हो गया। अच्छा नहीं, अंदर से गए तो पापा जी एक कॉफी क्लब वगैरह रेस्टोरेंट में भी जाते थे अंदर इन किताबों को बांटने के लिए। तो आप जो दिल्ली के भक्त हो, आपको तो और भी उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि आपके दिल्ली की गलियों में पापा जी इन ग्रंथों को बांटा है। पापा जी स्वयं तो सारे विश्व की गलियों में नहीं गए, पर दिल्ली की गलियों में तो वो जरूर गए, चांदनी चौक से कनॉट प्लेस वगैरह। तो पापा जी का यह उत्साह था, और हमने अंतिम दिनों तक देखा कि जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भौतिक दृष्टि से ठीक नहीं था, जब भी उन्होंने अनुवाद और ग्रंथों का वितरण का कार्यक्रम नहीं बंद किया। जब कोई भी आता था प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा बल देते थे उनको ग्रंथों का उपदेश देने, ग्रंथ दिखाने के लिए। और प्रभुपाद जी ने अंतिम दिनों में ग्रंथों का भी अनुवाद किया, जैसे कि 10वें सेकंड का, जब प्रभुपाद जी 10वें सेकंड के तीसरे भाग का जब प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे थे, बहुत ही दृष्टि से उस समय उनकी सेहत बहुत ही कमजोर थी, बैठने की भी योग्यता नहीं थी। एक भक्त संस्कृत के श्लोकों को पढ़ रहा था, दूसरे दो भक्त उनके बैठने में सहयोग दे रहे थे, एक और भक्त ने माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था, और इन सब भक्तों का सहयोग लेकर प्रभुपाद जी धीमे धीमे अनुवाद कर रहे थे और तात्पर्य सुना रहे थे। एक समय कई साल पहले प्रभुपाद जी जब तात्पर्य, आपको शायद पता होगा कि विदेशों में जाने से पहले, विदेश आने से पहले प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद किया हाथ से, पर विदेश में जाने के बाद प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन का उपयोग करना आरंभ किया, और प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में डिक्टेट करते थे। तो जब प्रभुपाद जी डिक्टेट करते थे, एक समय कर रहे थे, तो एक शब्द बोल रहे थे फिर रुक गए, एक शब्द बोला फिर रुक गए। तो उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि आप इतने धीमे धीमे क्यों डिक्टेट करते हो, क्योंकि जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हो आप तो शुरू करते हो और समाप्त करते हो, हाँ थोड़ा सोचते हो, ये थोड़ी कि हर शब्द लिखकर सोचते हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि हर शब्द जो इन ग्रंथों में मैं डाल रहा हूं भविष्य के 10,000 सालों तक लोग पढ़ेंगे, तो मुझे हर शब्द इन ग्रंथों में सोचकर डालना है। तो इन ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने पूरा ज्ञान दिया है भविष्य के 10,000 सालों के लिए। अभी हम भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन ग्रंथों को आगे पहुंचाएं। तो आप सोचोगे कि लोग तो इसके महत्व को नहीं पहचान पाते, तो हम कैसे लोगों को प्रभावित करें? अगर आप में उत्साह रहेगा तो आप दूसरों को प्रभावित कर पाओगे, अगर आप क्लास में सोओगे तो अवश्य ही प्रश्न ही नहीं उठता दूसरों को प्रभावित करने का। अगर आप में उत्साह रहेगा तो आप प्रभावित करोगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ बिकते हैं मेरे भक्तों के उत्साह के कारण। तो सबसे पहले तो आपके हृदय में बिना किसी शंका के ये विचार बैठना चाहिए कि इन ग्रंथों के अलावा और कोई उपाय नहीं है, और भगवत गीता कृष्ण बुक ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस समय हमने गीता दिल्ली में छापी है, दिल्ली वाले भक्त कह रहे थे बॉम्बे से मंगाने में देर लगती है तो आप दिल्ली में छापो। हाँ ब्रजभक्ति, तभी दिल्ली में छापा है तो आपको जितनी जितनी किताबें चाहिए अब जाके प्रेस से उठा सकते हो। हाँ इधर भाई, सो आप भक्तों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो परिचय दिया जा रहा था, ये भूमिका दी जा रही थी, इसका भाव एक ही था कि आप सारे भक्त इस मंदिर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में जुड़िए। ये नहीं कि ये जिम्मेदारी केवल फुल टाइम संकीर्तन भक्तों की है, ये जिम्मेदारी हर भक्त की है, जीबीसी हो, प्रेसिडेंट हो, लाइफ मेंबरशिप पीछे, ये सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम इस महीने में प्रयास करें अधिक से अधिक ग्रंथों को बांटने के लिए। बॉम्बे मंदिर ये साल ये महीने कम से कम 1.25 लाख गीता बांटेगा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख उनका कोटा है बांटने का, और सब प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये विनती करना चाहता हूँ आप भक्तों से कि आप सब मैराथन शेड्यूल में जाइए। अभी ये जो आपकी भगवतम क्लास है कर्तु प्रभु जी, ये बॉम्बे में अभी क्लास मैराथन का महीने में वी डू एट 6:30 और 6:20। तो 8:30 आप लोगों को याद होगा जब हमारा मंदिर ग्रेटर कैलाश में था, और पहले सारे स्कूटर वगैरह निकलना शुरू कर जाए 9 बजे तक तो लोग बाहर निकल जाते थे। कोई भक्तों को याद है मैराथन का? 8:30 बजे हम ऑटो रिक्शा सब लोड होके 9:00 एवरीबडी यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग आउट। तो मतलब कहने का यह है कि आप सब कृपा करके प्रयास करो ये सेवा में जुड़ने के लिए। जो पुजारी हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए, जैसे बॉम्बे मंदिर में राधा राजबिहारी के ऑल्टर में किताबों का टेबल रहता है, तो पुजारी भी वहां बैठकर सारा दिन जो भी आए वो पुजारी लोग भी प्रयास करते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए। हर भक्त को जुड़ना चाहिए इस मैराथन के साथ। जो लाइफ मेंबरशिप के भक्त हैं वो तो लाइफ मेंबरशिप भी करेंगे और किताबों को भी बांटेंगे, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दूसरे भक्त हैं। एक चीज मैंने देखा है, हाँ बुरा नहीं मानना, कि दिसंबर के महीने में जो आलसी भक्त हैं उनमें भी उत्साह आ जाता है। कई भक्त हैं सारे इस कारण कई तो है ना आलसी, एक घंटे का बस दिसंबर के महीने में जो आलसी भक्त हैं उनमें भी उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमने जरूर प्रयास करना है इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो मैं हम भक्तों से ये विनती करना चाहता हूं कि आप सब प्रयास कीजिए इस मैराथन में जुड़ने के लिए। और आप कहोगे हमने तो ये योग्यता नहीं है, हमने तो पहले कभी नहीं किया, तो हम भक्तों को भूलना नहीं चाहिए गीता का एक श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए उनमें अगर कोई कमी भी हो तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे दूर कर देता हूं। तो हमारे में वैसे तो देखा जाए कोई योग्यता नहीं है, भक्त तो सदा यही सोचता है कि मेरे कोई गुण नहीं है। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर मेरा कोई नाम भी लेगा तो उसके सारे गुण मिट जाएंगे, मेरा नाम भी मत लो। सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में चल रहे थे और चल रहे थे रेत के ऊपर, वह अपने आप को इतना पतित मान रहे थे कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं सड़क पर चलूंगा जहां छाए है तो किसी का शरीर मुझे छू देगा तो उसका शरीर जो है बेकार हो जाएगा। तो वो रेत के ऊपर चल रहे थे अकेले धूप में नंगे पैर, क्योंकि रेत में नंगे पैर कौन चलेगा धूप के समय। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई किसी कारण किसी घटना के कारण उनके शरीर को कोई छू दे, ये था उनका विचार। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई भावना नहीं है, पर अगर हम प्रयास करेंगे क्योंकि ये परम भगवान की इच्छा है। आप कहोगे नहीं 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 हम किताब बांटने जाएंगे लोग लेंगे नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस विषय में आज मैं पढ़ रहा था एक पत्र जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वही सब प्रभुपाद जी कह रहे थे जो भक्त है वो बेइज्जती महसूस नहीं करता अगर कोई किताबों को नहीं ले। मैं दो पत्र प्रभुपाद के पढ़ना चाहता हूं आपको। आई थिंक व्हाट वी शुड डू इन एवरी मॉर्निंग एट मंगल आरती रीड फ्रॉम बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक इन द वेस्ट वी डू दैट इन ऑल द टेम्पल्स। ये अंग्रेजी में है। लिटरेचर इज सेलिंग, द लर्नड सर्कल्स आर एप्रिशिएटिंग, इट टेक्स सम टाइम बट इफ वी स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स एंड डू नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज एंड पुश ऑन दैट इन दिस वे I have given you instruction. It will never stop. It will go on. It will never stop. At least for 10,000 years, it will go on. समझे आप? प्रभुपाद जी कह रहे हैं लोग ग्रंथों को खरीद रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर लगेगी पर अगर हम हमारी विधियों के साथ जुड़े रहेंगे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और प्रयास करते जाएंगे तो ये प्रचार कभी नहीं रुकेगा ग्रंथों का वितरण। और प्रभुपाद जी ने कहा 10,000 सालों के लिए तो जरूर चलेगा, 10,000 साल के बाद धर्म का कोई स्थान नहीं रहेगा पृथ्वी पर। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? आज अगर आप चाइना देश में हो और आप धर्म की बात करो या धर्म का प्रचार करो तो पुलिस वाले आपको जेल में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म है नास्तिकता। चाइना का ऑफिशियल रिलीजन पता क्या है? एथिज्म। ऑफिशियल सरकार खुद कहती है हमारा धर्म है नास्तिकता, कोई भगवान नहीं है। जैसे इस्लामिक देशों में कहते हैं हम इस्लाम में मानते हैं, नेपाल में कहते हैं हम हिंदू देश है, वो तो स्पष्ट कहते हैं वी आर एन एथियस्ट कंट्री, एथिज्म इज आवर रिलीजन। तो आज वो हो रहा है तो 10,000 साल बाद क्या आएगा? पर 10,000 सालों के बाद सब जगह धर्म का प्रचार असंभव रहेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 10,000 सालों के लिए तो प्रचार होगा। देन दिस इज अनदर वेरी गुड, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द एब्सोल्यूट नीड ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी एंड द मेनी पीपल विल कम टू जॉइन अस इफ वी सिंपली मेक दिस टीचिंग द भगवद गीता एंड द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर अवेलेबल टू देम। These books and magazines are our most important propaganda weapons to defeat the ignorance of Maya's army. And the more we produce such literature and sell it profusely all over the world, the more we shall deliver the world from its suicide course. So your work is the most important preaching work. May Krishna bless you more and more. Thank you very much for helping me in this way. Then I'm very glad to hear how the book distribution is increasing more and more. This is the greatest weapon. The more the books are distributed, the more the ignorance of the age of Kali will be smashed. The world is feeling the weight of the Hare Krishna movement, especially in your country. We have increased this book distribution more and more to firmly establish the movement, which is the only hope for the suffering living entities. The Prabhupada ji, in teen patron mein, apne bhaktan se keh rahe hain, ki jitna hum granthon ka vitran badhayenge, utni hi agyanta logon ki dur hogi. Aur yehi ek upay hai, माया का विरोध करने के लिए. माया की सेना बहुत मजबूत है. हाँ, माया की सेना हर जगह में उपस्थित है. तो अगर आप माया की सेना को हराना चाहते हो तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ग्रंथों का वितरण ये एक ही उपाय है. तो असल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में हमें कॉन्ग्रीगेशन के जो भक्त हैं उनको भी साथ जोड़ना चाहिए. हाँ, मॉस्को हर जगह लगभग आधी डिस्ट्रीब्यूशन भक्त मंदिर के कहते हम कर रहे हैं, पर उनको भी जोड़ना चाहिए. तो आप भक्तों से जो लाइव मेंबरशिप प्रीचर्स हैं उनके तो सबके जान पहचान है. वो अपने मेंबरों के द्वारा दूसरों को गीता दिलवा सकते हो. हम जेलों में गीता बांट सकते हैं, होटलों में बांट सकते हैं, हॉस्पिटल में बांट सकते हैं. लोग अपने मित्रों को प्रेजेंट के रूप में दे सकते हैं. और मंदिर में जो आएंगे उन्हें तो हम उनको भी दे सकते हैं. हर भक्त को यही सोचना चाहिए कि मैंने 10 घंटा दिन में जाना है. प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, मैराथन का क्या अर्थ? किस भक्त को पता है मैराथन का अर्थ? तो मैराथन का अर्थ है अधिक प्रयास करना. ये है तो अंग्रेजी शब्द, पर पूरे इस्कॉन में सब सीख गए हैं. चाहे आपकी मातृभाषा रूस हो, चाइनी हो, जर्मन हो, सब मैराथन का अर्थ जानते हैं. तो मैराथन के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा, कम सोना और कम खाना. तो हमें भी यही करना चाहिए, कम सोना और कम खाना. कम से कम एक महीना तो ये व्रत रखना चाहिए, कम सोने का कम खाने का. तो फिर जनवरी में डबल खा लेना, पर ये महीने जो है कम खाओ. तो आप सब भक्तों का प्रयास करना चाहिए.